તારીખ 22/3/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 223 પર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું આગ્રામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 13
લિખને કી પદ્ધતિ ક્યા હૈ મહાત્મા વાસુદેવ કી ભક્તિ મેં યહી પ્રકાર સે રહી થી કે ગોપાંગના એસી રહી થી પરમાત્મા કો निरंजन और निर्देह रूप से चिंतन करने पर जीव को यह ले आना विकट है। निरंजन निराकार परमात्मा को चिंतन करने से ऐसी ले नहीं आती। इसी सिद्धांत पर तो हमारे यहाँ प्रतिमा जी का स्थापन है। जो देहधारी मूर्ति हम स्थापित करते हैं ना अरिहंत परमात्मा की, यही कारण से है कि उसके जो आत्मभाव है वो हमें वितराग मूर्ति में प्रकट रूप से दिखने में आता है, तो हमारे ऐसे ही भाव आविर्भाव होने लग जाते हैं। लेकिन निरंजन निराकार अकेले आत्मा को चिंतन में लेंगे तो इतना भाव नहीं आएगा जितना भाव देह रूप चिंतन में से देह रूप से चिंतन में आता है। इसलिए ही जिसको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, कौन है? सत्पुरुष। जिसको अपना परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है, साक्षात्कार हुआ है, ऐसा देहधारी कौन? परमात्मा। देहधारी सत्पुरुष नहीं लिखा इधर। ऐसा देहधारी परमात्मा यह पराभक्ति का परम कारण है। यह पराभक्ति का परम कारण है। परम कारण बताया उसको। ऐसा क्यों कहा? उसको परमात्मा क्यों कहा? कि अपने तिरने का निमित्त देखा, जो परमात्मा में देखा जाता है। परमात्मा के दर्शन में क्या दिखते हैं? वो परमात्मा है ऐसा नहीं देखा जाता है। वो हमारे परम कल्याण का परम निमित्त है ऐसा देखा जाता है, तभी परमात्म भाव दिखने में आता है। इसके पहले कल्पना होती है, सही भाव नहीं आता है। ये बहुत गुड विषय है। वह ज्ञानी पुरुष के सर्वचरित्र में ऐक्य भाव का लक्ष्य होने से उसके हृदय में विराजमान परमात्मा का ऐक्य भाव होता है और यही पराभक्ति है। पराभक्ति की एक खोल करके व्याख्या कही। क्या कहा? ज्ञानी पुरुष जो देहधारी है उनका देह को छोड़ करके, उनकी वाणी को छोड़ करके, उनके विकल्प को छोड़ करके, इसके हृदय में विराजमान जो परमात्मा है उस परमात्मा का मुमुक्षु दर्शन करता है और उस आत्माकार जो परिणाम हुए उस ज्ञानी के, जो परमात्मा इसके हृदय में विराजमान है उस परमात्मा के आकार रूप जो परिणाम ज्ञानी के हैं, इसका दर्शन जब मुमुक्षु को होता है तब ज्ञानी की पहचान होती है। किस रूप में होती है? कि परमात्मा के रूप में होती है। आता है कहीं और जगह? आता है पूर्णचंद जी? कहाँ आता है? सुगानी जी लिखते हैं द्रव्य दृष्टि प्रकाश में। क्यों भूल जाते हो? मैं एक गुरुदेव को देहधारी गुरुदेव नहीं जानता हूँ, ये जो व्याख्यान करते हैं उसको मैं गुरुदेव नहीं मानता हूँ। आता है कि नहीं आता है? अब तो स्मरण में आया ना। लेकिन अंदर जो परमात्मा है उसका दर्शन मैंने किया। कैसे किया? वो तो अव्यक्त है, तो के पर्याय में प्रकट हुआ था वो। क्या इसके पर्याय में वो परमात्मा प्रकट हुए? क्योंकि वो पर्याय जो है वो आत्माकार होगी, परमात्मा के आकार रूप में होगी, उसका दर्शन हमें हम किया। इसलिए सत्पुरुष परमात्मा के रूप में देखे जाते हैं, तभी इनके सभी परिणामों में, क्या इनके प्रत्येक पर्यायों में वही देखने में आता है। एक के भाव मैंने क्या अंतर नहीं रहना, आपस में अंतर नहीं रहना। परमात्मा तो बहुत बड़े आत्मा है, महान आत्मा है, लेकिन उसको एक वचन में पुकारते कि नहीं पुकारते? तो ऐसा है, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आप ऐसा है ऐसा नहीं कहते हैं, तो ऐसा है, ऐसा क्यों कहते हैं? अंतर नहीं रहा। उतना पर प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभु से, उतना प्रेम आता है कि बहुवचन छोड़ करके एक वचन में उसको पुकारने लग जाते हैं। पर ऐसा इतनी भक्ति होने से क्या फायदा होता है? ये राग नहीं है, ये भक्ति वो राग के पर्याय नहीं है, ये ज्ञान के पर्याय है। क्योंकि इसमें बहुमान हुआ है, पहचान पहचानने के पर्याय ज्ञान की होती है कि राग की? ज्ञान के होती है। तो दर्शन वो है वो एकदम शिथिल हो जाता है। जिसने दर्शन मोह का अभाव किया, ऐसी जो चैतन्य मूर्ति है जिसमें दर्शन मोह का अभाव हो गया है, उसकी महिमा करने वाले परिणाम में दर्शन मोह की तीव्रता रह सकती नहीं है। ये इसका सीधा हिसाब किताब है। ये करुणानुयोग का गणित है उसका। तो दर्शन मोह जिसका गल गया, उसके मति ज्ञान में निर्मलता आएगी, इसकी मति निर्मल हो जाएगी और उसमें सब आगम के भेद आ जाएंगे। सब आगम भेद सौर बसे, इसके हृदय में सभी आगम का भेद आ जाएगा। सागम क्या कहना चाहता है उसका पता उसको मिल गया। क्या कहा? जिसको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, ऐसा देहधारी परमात्मा वह पराभक्ति का परम कारण है। देहधारी आत्मा नहीं कहा, देहधारी परमात्मा यह पराभक्ति का परम कारण है। यह ज्ञानी पुरुष के सर्वचरित्र में देखो, एक में भूल नहीं देखी, सर्वचरित्र में ऐक्य भाव का लक्ष्य होने से मैंने सभी जगह परमात्मा ही परमात्मा देखने में आता है। उसके हृदय में विराजमान परमात्मा का भी ऐक्य भाव होता है, अंतर छूट जाता है, सीधा वायरलेस कनेक्शन रहता है परमात्मा और मुमुक्षु के बीच में, वायरलेस कनेक्शन हो जाता है, ऐक्य भाव हो जाता है, भाव में दूरी नहीं रहती है। और यही पराभक्ति है। अब क्या कहते हैं पढ़िए।
उनके जीवन में जो राग है वो नहीं दिखाई देता उस समय।
राग नहीं दिखाई देता, उसको परमात्मा ही दिखाई देता है। मैं आपको पूछता हूं कि आपके घर पे प्राइम मिनिस्टर आया, हाँ, तो इसके साथ इसका पियोन भी होगा, आपको कौन दिखाई देगा? हैं? प्राइम मिनिस्टर ही दिखाई देगा या पियोन दिखाई देगा? तो पियोन साथ में होता है लेकिन दिखने में आता नहीं है, हाँ? ऐसे सत्पुरुष में जो परमात्मा है, जो परमात्मा प्रकट हुआ है, साक्षात्कार हुआ है, वो दिखाई देता है, तो बगल में थोड़ा राग है वो दिखाई नहीं देगा। जिसको सत्पुरुष का राग दिखाई देता है उसको सत्पुरुष का दर्शन हुआ ही नहीं, ऐसी बात है। अब क्या लिखते हैं, ज्ञानी पुरुष और परमात्मा में अंतर ही नहीं है, लिखा है ज्ञानी पुरुष और परमात्मा में अंतर ही नहीं है। और जो कोई अंतर मानता है, आपका दोपहर का प्रश्न है, पद के अनुसार अंतर मानना के नहीं मानना, ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है। और जो कोई अंतर मानता है उसे मार्ग की प्राप्ति परम विकट है, थोड़ी विकट नहीं है। ज्ञानी पुरुष और परमात्मा में पद का अंतर है ऐसा मानता है उसको मार्ग की प्राप्ति बहुत दूर है। वास्तव में तो होगी ही नहीं, ये अभिप्राय उसको बदलना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, हमारे यहां सुनने वाले सब बुद्धिमान लोग हैं और सुनाने वाले भी बुद्धिमान हैं, क्या तो ये बुद्धि की बहुत ये चलती है, जिसको कहते हैं मैच, मैच कहते हैं ना रिफाई, अब क्या कहते हैं उसको,
प्रतिस्पर्धा,
हाँ प्रतिस्पर्धा चलती है, स्पर्धा चलती है सुनने वाले की और कहने वाले की, बुद्धि की स्पर्धा चलती है। तो सुनाने वाले तो थोड़ा ऊपर बैठता है, सुनने वाले नीचे बैठते हैं, तो थोड़ा सुपीरियरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में आ जाता है कि मैं कुछ इससे बड़ा हूं। फिर क्या होता है कि देखिए भाई, संतुलन रखना, जिसका जितना पद है उसका नाप करके क्या बराबर भक्ति करना, हम ये नहीं कहेंगे कि कम करना, लेकिन ये अवश्य कहेंगे कि अधिक मत करना। भगवान है, अरिहंत परमात्मा है, वो 1008 लक्षण के धारक होते हैं, तो उसकी भक्ति 1008 विशेषण से होनी चाहिए। और मुनिराज जो है वो 108 लक्षण के धारक होते हैं, तो इसकी भक्ति इसके अनुसार होनी चाहिए। और सम्यक दृष्टि तो अविरति होते हैं, कैसे होते हैं, अविरति होते हैं, इसका तो दुर्गुण देखा, गुण भी नहीं देखा तो इसकी तो भक्ति खास करने लायक नहीं है। ठीक है, क्योंकि खास करने लायक नहीं है, तो अगर ऐसा नाप जोखना, नाप तोल करके भक्ति करना, अधिक करेंगे तो मिथ्या तो हो जाएगा, और कम करेंगे तो भी अपना जो भाव है वो कम रह जाएगा। इसलिए बराबर उसका लिमिट जो है उस लिमिट में रह करके करना। तो हिसाब किताब तो बुद्धि वाला का काम है, वो बुद्धि से हिसाब किताब कराते हैं, वो सामने जो बुद्धि वाले बैठे हैं, बात लगता है कि बात तो बुद्धि माने की करते हैं, बराबर बुद्धि लगाई है। ऐसा काम इधर काम में नहीं आता, ऐसी बात है, ये गड़बड़ हो जाती है। एक तो अपने विचार की स्थिति अधूरी है, अपरिपक्व है, और उसमें ऐसा कोई लकड़ा घुसा देते हैं तो बराबर फिट हो जाता है, ये बात बनती है कभी कभी। कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष और परमात्मा में अंतर ही नहीं है, और जो कोई अंतर मानता है उसे मार्ग की प्राप्ति परम विकट है। ज्ञानी तो परमात्मा ही है, क्या लिखा है, ज्ञानी तो परमात्मा ही है, और उसकी पहचान बिना किसी को भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। इसके परमात्मा के रूप में पहचाने बिना किसी को परमात्मा का, निज परमात्मा का दर्शन हुआ नहीं। यह अटल सिद्धांत है। मोक्ष मार्ग के का प्रारंभ तो शुद्धोपयोग रूप साक्षात्कार से होगा, उसमें निज परमात्मा का साक्षात्कार होगा, लेकिन ये कब होता है कि ज्ञानी में परमात्मा का दर्शन होने पर होता है, इसके पहले कभी किसी को होता ही नहीं, न किसी को हुआ भी है, होने वाला भी नहीं है। इसलिए सर्व प्रकार से भक्ति करने योग्य, कितने प्रकार से, सर्व प्रकार में कौन सा प्रकार बाकी रहा बताइए, अर्घ चढ़ाना नहीं, इतना तो बाकी रखना क्या नहीं है, क्या लिखते हैं इधर। इसलिए सर्व प्रकार से भक्ति करने योग्य ऐसी देहधारी दिव्य मूर्ति क्या नजर आई, देहधारी दिव्य मूर्ति ज्ञानी रूप परमात्मा, उसकी उसको नमस्कार आदि भक्ति से लेकर के पराभक्ति के अंत तक कोई बाकी, कोई प्रकार बाकी नहीं रहा, नवदा भक्ति में से एक भी प्रकार बाकी नहीं रहा, पराभक्ति के अंत तक एक लय से आराधन करना, बीच में खंड पड़ने देना नहीं, अखंड वृत्ति से उसका आराधन, एक ले मैंने अखंड वृत्ति से आराधन करना, ऐसा शास्त्र का लक्ष्य है। ये शास्त्र लक्ष्य है, शास्त्र ऐसा कहता है, हमारा शास्त्र ऐसा कहता है, ये कहते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि समयसार में ये बात आई क्या नहीं आई है, क्यों नहीं पूछते हो आप नहीं पूछेंगे तो हम उठाएंगे इस बात को कि समयसार में ये बात तो नहीं आई, हम तो समयसार पढ़ने वाले हैं, सोनगढ़ वाले तो है, समयसार में ये बात आई कि नहीं आई, आई है, कहाँ आई है, 143 गाथा की टीका में निकालिए, जिसको साक्षात्कार हुआ इसके लिए भगवान अमृतचंद्र आचार्य ने किस शब्द का प्रयोग किया है आप पढ़ करके बताइए, किस शब्द का प्रयोग किया है, आखिर में बात आती है।
केवली की बातें भी विकराल,
आगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो,
जैसे ही होते हैं ऐसा जानना,
उसके पहले
जब नए पक्ष को छोड़कर वस्तु स्वरूप को मात्र जानते ही है, तब उस समय शुद्ध ज्ञानी भी केवली की भांति वीतराग जैसे ही होते हैं ऐसा जानना।
और आगे है लिखा है कुछ,
अब इस कलश में कलश है
आगे। 143 गाथा की टीका पढ़ रहे थे आप?
हाँ जी।
नहीं, भावार्थ नहीं पढ़ना है, मूल गाथा। मूल गाथा के आखिर के पंक्ति पढ़िए आप। श्रुत ज्ञानात्मक समस्त अंतर जल्प तथा बहिर्जल्प रूप विकल्पों की भूमिका के अतिक्रांत के द्वारा समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता। वह आत्मा वास्तव में समस्त विकल्पों से अति पर, क्या शब्द लिखा है, अति पर, फिर परमात्मा लिखा कि नहीं? परमात्मा किसने लिखा? यह अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा कि यह आत्मा अति पर हुआ, परमात्मा हुआ। परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्येक ज्योति आत्मख्याति रूप अनुभूति मात्र समय सार है। लिखा कि नहीं लिखा? परमात्मा बोला कि नहीं बोला उसको? तो श्रीमद जी कहते हैं वो बात नहीं, अमृतचंद्र आचार्य भी वही बात कहते हैं समय सार में कि ये परमात्मा है। आचार्य महाराज को इतनी महिमा आई है कि कितने शब्द लिख दिए, वही सभी विकल्पों से अति पर परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्येक ज्योति आत्मख्याति अनुभूति मात्र समय सारे, इतने शब्द रख दिए। बहुत भाव आ गया एकदम। ऐसा लिखा क्यों लिखा? कोई ठिकाने नहीं था क्या? हा? वंदामहे तम वयम् क्या लिखा है? उसकी सुंदर बुद्धि को देख करके वंदामहे तम वयम्, हम उसको वंदन करते हैं। ये कैसे बनता है? उनका भी ठिकाने तो होगा। ये वीतरागता को नमस्कार करते हैं। किसको नमस्कार करते हैं? वीतरागता को नमस्कार करते हैं। आत्मा को, आत्मभाव को नमस्कार करते हैं। जब ऐसे महामुनि ऐसी बात करते हैं तो हमें क्या करना है? वो कोई सिखाने की जरूरत है क्या? समझाने की जरूरत रहती है क्या? टाइम तो बहुत हो गया है,
लेट हुआ था।
तो कहते हैं कि ऐसे दिव्य देहधारी दिव्य मूर्ति ज्ञानी रूप परमात्मा के नमस्कार आदि भक्ति से लेकर के पराभक्ति के अंत तक एक लय से आराधन करना, ऐसा शास्त्र लक्ष्य है। परमात्मा यह देहधारी रूपे हुआ है। ज्ञानी को कैसे देखते हैं कि ये परमात्मा देहधारी रूपे मेरे लिए हुआ है, इसने मेरे लिए अवतार धारण किया है, ऐसा दिखता है इसमें। आप अपने लिए नहीं आए, आप मेरे लिए इधर आए। ऐसा ही ज्ञानी पुरुष के प्रति जीव को बुद्धि होने पर सही भक्ति पैदा होती है। गुजराती में उगे से ले से उगले उगलती है, अंदर से भक्ति उगलती है। और यह भक्ति क्रमशः आगे जा करके पराभक्ति रूप होती है। इस विषय में श्रीमद् भागवत में, भगवद गीता में बहुत भेद प्रकाशित करके यही लक्ष्य का प्रशंसा किया है। अधिक क्या कहना, ज्ञानी तीर्थंकर देव में लक्ष्य होने के लिए जैन में भी, हम ये वैष्णव की बात करते हैं नहीं मानना, जैन में भी पंच परमेष्ठी मंत्र जो अनादि के हैं उसमें नमो अरिहंताणं पद के बाद सिद्ध पद को नमस्कार किया है। क्या रहस्य है इसके पीछे दिखाइए, क्या सिद्ध भगवान की अवमानना नहीं होगी, अनादर नहीं होगा? हाँ, इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है क्या? सिद्ध पद को पीछे रखना और अरिहंत पद को आगे रखना, इसके पीछे कोई रहस्य है? वैसे कोई अदर से लिखी हुई बात नहीं है, अनादि मूल मंत्र है ये जैन धर्म का। जैन में भी पंच परमेष्ठी मंत्र में देखो श्रीमद्दी का ज्ञान कितना गहरा था। नमोरियंताणं पद पीछे सिद्ध को नमस्कार किया है, यही भक्ति के लिए ऐसा सूचन है कि प्रथम ज्ञानी पुरुष की भक्ति करना। क्या? प्रथम ज्ञानी पुरुष की भक्ति करना, पीछे भगवान की भक्ति करना, ऐसा कहते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, मोहंडर खड़ा हो जाएगा? और यही परमात्मा की प्राप्ति का निदान है और भक्ति का भी यही निदान है। ये तो सत्पुरुष की महिमा उन्होंने इतनी गाई है कि 213 पढ़ेंगे तो लग जाएगा कि कुछ है, लिखने वाला भी है। 213 कल सुबह में लेंगे उसको, बहुत गजब की कलम चलाई है, ऐसी कलम कहीं चलाई हमने देखी नहीं है, ऐसी कलम चलाई है। निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी जीव को मोक्ष मार्ग की या सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसको ज्ञानी पुरुष के मिलने पर ही होती है। तीन काल में ही तीनों काल का सिद्धांत है। इससे ज्ञानी पुरुष को पहचानना, पहचान करके उसकी प्रतीति आएगी, तभी ही ज्ञान प्राप्ति होगी। मिलने का यही अर्थ है। मिला हुआ कब कहते हैं कि पहचान आती है, तब पहचान कर आती है कि पहचानने की योग्यता होती है तब। इसलिए बात यहां पर आती है कि मोक्ष जीव को अपने में इस प्रकार की योग्यता आए और ज्ञानी को पहचाने, तभी ज्ञान प्राप्ति संभव है। इसके पहले ज्ञान प्राप्ति संभव नहीं है।
वेदांत सूत्र में ऋषभदेव जी भगवान ने जहाँ 98 पुत्रों को उपदेश दिया है, मोक्ष मार्ग पर चढ़ाया है, वहाँ यही उपदेश किया है। इसलिए दृष्टांत दे रहे हैं कि चतुर्थ काल में प्रारंभ में आदिनाथ भगवान ने भी यही उपदेश दिया था। उपदेश का प्रारंभ यहां से हो गया था, सबसे पहले कि ये आयुष्य मनो किस प्रकार का उपदेश दिया था। इस जीव ने सब कुछ किया है, एक इसके बिना जब तक प्रतापी शास्त्र अध्ययन सब कुछ किया है, एक इसके बिना क्या, वो क्या है? क्योंकि निश्चय पूर्वक कहते हैं कि सत्पुरुष का कहा हुआ वचन उसका उपदेश सुना नहीं है, उसका उपदेश सुना ही नहीं है। सुना किसे कहे, सुना किसको कहे, कि इस वचन की प्रतिक्रिया है तब, अथवा सम्यक प्रकार से उसका पालन नहीं किया है। 194 पृष्ठ संख्या 263। और इसे ही उन्होंने मुनियों की सामायिक कहा है। आत्मस्वरूप की प्राप्ति जिसमें होती है, सत्पुरुष के वचन को पालन किया या अंतर में उतरे उस तरह सुना, उसको दूसरे नाम से मुनियों की सामायिक कह दी है। देखो कितना कितनी बड़ी उपमा दिया है। चतुर्थ काल के प्रारंभ में ऋषभदेव भगवान ने ऐसा कहा और यही चतुर्थ काल के अंत में सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को उपदेश देते हैं। यहां से लेकर के बीच में सब बात चली है, ऐसा कहते हैं। सब कुछ किया है लेकिन सत्पुरुष की पहचान नहीं की है, इसके सिवा सब कुछ कर लिया। देखो एक जगह भूला है और जो जगह भूला है तो जो कुछ किया वो नहीं किया के बराबर हो गया है। कितना महत्व दिया है। ऋषभदेव भगवान ने भी यही कहा और महावीर स्वामी के बाद जो केवली हुए सुधर्मा स्वामी, उसने भी जंगी स्वामी को यही कहा था। तो ये उपदेश देते कि देते थे कि सारे जगत का जिन्होंने दर्शन किया है, ऐसे महावीर भगवान ने हमें इस प्रकार कहा है। महावीर भगवान ने, हम महावीर भगवान के शिष्य हैं और भगवान ने हमें ऐसा कहा है। क्या कहा? कि गुरु के अधीन होकर आचरण करने वाले अनंत पुरुषों ने मार्ग प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त किया है, गुरु के आज्ञा के अधीन होने करके। इसके सिवा किसी ने स्वच्छंदता से मोक्ष प्राप्त किया हो ऐसा नहीं बना है। जिन आज्ञा अनुसार कहो, गुरु आज्ञा अनुसार कहो, उसी अनुसार चले तो मोक्ष की प्राप्ति हुई है, वरना सत्संग से सब कुछ किया है। जो कुछ किया है वो सत्संग से किया है। एक इसी स्थल में नहीं परंतु सर्व स्थलों और सर्व शास्त्रों में यही बात कहने का लक्ष्य है। कृपालु जी को यही बात दिखती है, श्रीमद जी को।
तो सर्वशास्त्र में यही कहने का तात्पर्य है, कोई जीव अपने स्वच्छंद से मोक्ष मार्ग को और मोक्ष को नहीं पा सकता है। इतना अनजाना मार्ग है अंतर्मुख होने का कि कोई जीव अपने आप ऐसे पा सकता नहीं है। मार्ग दर्शाने वाले होते हैं और ऐसी योग्यता में आता है तो मार्ग की प्राप्ति होती है। आना ये धम्म, आना ये तवो, आगना वही धर्म है, आगना वही तप है। आज्ञा का आराधन ही धर्म और आज्ञा का आराधन ही तप है, ऐसा आचारण सूत्र का ये वचन है। जो पहला सूत्र है वो आचारण है, बारह अंग के पहला अंग है वो आचारण है, उसका यही सूत्र है। सब जगह यही पुरुष, यही महापुरुषों ने कहने का लक्ष्य है। सभी जगह महापुरुषों को के कहने का लक्ष्य तो यही है। यह लक्ष्य जीव की समझ में नहीं आया, दूसरा दूसरा सब कुछ समझ में आया, लेकिन यही बात समझ में नहीं आया। कभी कभी तो क्या बोले कि ये तो निमित्त की बात है। क्या? अरे महाराज, उपादान की तो बात करो, ये निमित्त की बात क्यों करते हो? यही जगह भूला है। बिना गुरु आज्ञा और गुरु आधीनता बिना स्वच्छंद कैसे हो जाता है उस जीव को खुद को पता नहीं चलता है। यह लक्ष्य जीव की समझ में नहीं आया, इसके कारणों में सबसे प्रधान कारण स्वच्छंद है। क्या कारण से समझ में नहीं आया? स्वच्छंदता के कारण से समझ में नहीं आया। कभी कभी तो ऐसी भूल की है कि एक ज्ञानी को माने, स्वीकार करे और दूसरे को नहीं माने। क्या? एक को माने और दूसरे को नहीं माने। कोई प्रसिद्ध ज्ञानी को माने, दूसरे को नहीं माने। इसका मतलब क्या कि उसने पहचाना नहीं, एक को भी पहचाना नहीं है। जो एक हीरे को पहचानता है वो सभी हीरे को पहचानता है, होता है कि नहीं होता है? इसलिए एक ज्ञानी को माने और दूसरे को नहीं माने, इसका मतलब के वो मानता है वो भी स्वच्छंद है, नहीं मानता है वो भी स्वच्छंद ही है, दोनों में स्वच्छंद है। और जिसने स्वच्छंद को मंद किया है, ऐसे पुरुष के लिए प्रतिबद्धता के भेद दिए है काउंस में। ऐसे पुरुष के लिए प्रतिबद्धता इत्यादि बंधन को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय जो कोई हो उसका ऊपर से आप विचार कीजिए। कौन सी प्रतिबद्धता होती है? लोक संबंधी या समाज संबंधी बंधन रहता है। समाज क्या कहेगा? हम ज्ञानी पुरुष को समीप जाएंगे, मानेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे? स्वजन कुटुंब बंधन, ये प्रतिबंध कुटुंब प्रतिबद्धता है। कुटुंब में भी एक अभिप्राय सबका नहीं रहता है, तो वो भी जो छूटना चाहता है उसको पकड़ करके संसार में लाने का प्रयास करते हैं, ये कुटुंब प्रतिबंध है। देहाभिमान रूप बंधन, देह प्रतिबद्ध, शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता साता असाता को मुख्य करके जीव ज्ञानी पुरुष के संग करना छोड़ देता है या गौण कर देता है। क्या करें, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं चलता है, तो देह को, देह की साता को मुख्य करता है और सत्संग को गौण कर देता है, और संकल्प विकल्प रूप बंधन, अनेक प्रकार के शास्त्र आदि पढ़ने पर विकल्प वृद्धि हो जाती है, इस न्याय से ऐसा है, इस न्याय से ऐसा है, इस प्रकार से ऐसा है, उस प्रकार के अनेक प्रकार के विकल्प में रुक जाता है इत्यादि। बंधन को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय जो कोई हो उसके ऊपर, उसके इस पर से आप विचार कीजिए, और इसे विचारते हुए जो कुछ योग्य लगे वह हमें पूछिए, इसका पर विचार करिए। अगर मार्ग नहीं मिले या मार्गदर्शन चाहिए तो हमें पूछिए, और इस मार्ग से यदि कुछ योग्यता प्राप्त करेंगे तो चाहे जहां से भी उपशम मिल जाएगा, मैंने शांति मिल जाएगी क्या। इस मार्ग से यदि कुछ योग्यता प्राप्त करेंगे, योग्यता आ जाएगी, पात्रता आ जाएगी, तो चाहे जैसे भी शांति, आत्म शांति की प्राप्ति होगी और होगी ही। उपशम मिले और जिसकी आज्ञा का आराधन करें, ऐसे पुरुष की खोज में रहिए, अपनी शांति के लिए जिसकी आज्ञा का आराधन करना हम चाहेंगे, ऐसे कोई ज्ञानी पुरुष की खोज कर लेना। बिना खोज मिलता है मुफ्त में तो इसकी कीमत नहीं होती। पिताजी के वारिस में संपत्ति मिलती है तो इसकी कीमत नहीं होती। खुद परिश्रम करके, पसीना उतार करके अगर कुछ कमाई करता है तो उस पैसे की कीमत होती है, बनता है कि नहीं, क्योंकि वो पैसे को ऐसे व्यर्थ गवाएगा नहीं, बर्बाद नहीं करेगा संपत्ति को। लेकिन मुफ्त में आ गई है तो जैसे सट्टे से कमाते हैं बहुत खर्च करते हैं, मजदूर से कमाते हैं उतना खर्च नहीं करेंगे, मेहनत से कमाएंगे उतना खर्च नहीं करेंगे, और सट्टा में आ गया तो खर्च करेंगे। ऐसे बिना खोज ज्ञानी मिल गया, ध्यान नहीं जाएगा, खोज करने से मिलेगा तो फिर उसके चरणारविंद में इतना आ जाएगा, इतनी आज्ञा में, इसकी आज्ञा में इतना आ जाएगा कि वो आज्ञा को छोड़ करके चलेगा नहीं। इसलिए खोज में रहिए। देखो क्या सूचना की है कि खोज में रहिए, बाकी दूसरे सभी साधन बाद में करने योग्य है, इसके पहले कुछ करे कि नहीं करे, शास्त्र पहले पढ़े कि नहीं पढ़े, प्रश्न हुआ था कि पहले इसकी खोज करिए, दूसरा कुछ भी साधन करना हो तो पीछे करना, पहले खोज करना। क्या कहा, बाकी दूसरे सभी साधन बाद में करने योग्य है, इसके सिवाय दूसरा कोई मोक्ष मार्ग विचारने पर प्रतीत नहीं होगा। इसके सिवाय छूटने का मार्ग जो है मिलेगा, यह कल्पना करने योग्य नहीं है। विकल्प से प्रतीत होता हो तो बताइएगा, अगर तुमको दूसरा कोई मोक्ष मार्ग नजर में आता हो तो हमें बता देना, ताकि जो कुछ योग्य हो वो बताया जा सके, तो इसके पर भी हम कुछ आपको मार्गदर्शन देंगे। तो इस पत्र में अपने अनुभव से उन्होंने सबसे पहले सत्पुरुष की खोज करके उसको पहचान करने का कहा है। ऐसा हुए बिना किसी को भी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कभी होती नहीं है, यह सिद्धांत यहां से निकलता है और सभी शास्त्रों का यही कहने का बोध लक्ष्य है, ऐसा भी उन्होंने फरमाया। 194 पूरा होता है यहाँ। भी ऐसा एक्सीडेंट भी बनता है, फिर भी उस काल में कोई अपूर्व जिज्ञासा होती है। हम इस प्रसंग को कुछ गहराई से विचार करें कि चारण रुद्रधारी मुनियों का योग बनना वो एक बिना सोचे हुए प्रसंग था। महावीर भगवान के जीव को ऐसे योग तो ऐसे होता है, लेकिन इस वक्त क्या हुआ कि सिंह को तो भूख लगी थी, इसलिए उसने हिरण को मारा भी था और हिरण को खाता भी था। अब क्या हुआ कि मुनिराज को पता चला, नीचे उनकी दृष्टि गई कि कोई सिंह है और हिरण को मार करके खाता है। उनके अवधि ज्ञान में पता चल गया कि ओहो, ये तो भगवान महावीर जो तीर्थंकर होने वाले हैं इसका जीव है, दस वो बाकी था, इसको संबोधन करना चाहिए। वो संबोधन करने के लिए नीचे उतरे। अब सिंह को कैसा परिणाम हुआ होगा इसका विचार हमें कुछ गहराई से करना होगा। तो सिंह को तो अच्छी तरह अनुभव है कि हमको देख के मनुष्य भगने लगते हैं, सभी प्राणी भगने लगते हैं। सिंह तो राजा है जंगल का, दूसरे प्राणी भी भगते हैं, मनुष्य तो खड़े रहते नहीं है। तो उन्होंने देखा कि ये तो हमारे पास आ रहे हैं, ये क्या बात है। जब ये दिगंबर मुनियों की निर्दोषता देखी, उन्होंने वितरागता देखी, आश्चर्य में पड़ गया, जिज्ञासा में आ गया कि क्या हो रहा है। जो मुनियों ने उसकी भाषा में संबोधन किया और पूरे जिज्ञासा में आ गया, अरे ये मुझे क्या कह रहे हैं। तो उसका स्वरूप को भान करवाया उस वक्त, क्या क्या कि तुम कौन है, तुम ये शरीर सिंह का जो है ऐसा सिंह के शरीर वाला सिंह है नहीं, तुम सिंह नहीं है, तुम एक आत्मा है, परमात्मा है। उसका जो भी बोध दिया वो उतनी जिज्ञासा से उन्होंने सुना। कोई मामूली सिंह होता तो उसको मार करके खा जाता, मुनि को भी मार करके सिंह खा जाता है जंगल में, ऐसा नहीं है कि मुनि है इसलिए उसको नहीं खाए। लेकिन ऐसा नहीं किया तो उसके परिणाम कैसे हुए, तो ऐसा नहीं किया। इसके जो सिंह के जाति के जो परिणाम थे, इस जाति के परिणाम नहीं रहे। तो उस वक्त योग्यता की जो प्राप्ति है वो बिना किसी पूर्व शर्त होती है। क्या इसको कोई पूर्व पर्याय की शर्त नहीं होती है, ऐसे ही योग्यता की प्राप्ति होती। अरे ये क्या मेरे भलाई की बात करते हैं, मेरे कल्याण की बात करते हैं, पर कैसे मेरे कल्याण की कैसी बात करते हैं ये। और ध्यान से जिज्ञासा से सुनने से ही उनकी पात्रता पैदा हो गई। और जहाँ पात्रता पैदा होती है वहाँ ज्ञान की प्राप्ति होना बहुत आसान है। तो उसके जो परिणाम हुए थे उसका अभ्यास करें तो बिना योग्यता वहां प्राप्ति हो गई थी ऐसी बात तो नहीं निकलती है। अब क्या इस दृष्टांत से हमें ऐसा कोई पुण्य योग बनने के इंतजार में रहे या हम खोज करें? तो प्रश्न वो खड़ा होता है कि भगवान महावीर स्वामी की तरह हमें भी इंतजार करना है, ऐसा इंतजार करना है या हमें खोज करनी चाहिए? अगर हमें जरूरत लगी हो तो खोज किए बिना नहीं रहेंगे। और आज तक हमने खोज नहीं की इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जरूरत महसूस नहीं हुई है। और बिना जरूरत मिल भी गए तो क्या हुआ कि हमारा ध्यान नहीं गया, बस ऐसा ही हो रहा है। अभी तक जो हुआ है अनंत बार ऐसा ही हुआ है। कभी ऐसा बनता है लेकिन उस वक्त योग्यता की प्राप्ति हो जाती है।
कमाना पड़ेगा।
उस वक्त योग्यता की प्राप्ति होती है। उस वक्त योग्यता नहीं होती और मिल जाता है ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं बनता। पर हमें तो हमारी परिस्थिति का विचार और शास्त्र में जो भी कथाएं हैं इसकी इतिहास है उसमें बोध ग्रहण करने का अलग अलग प्रकार का एंगल होता है, दृष्टिकोण होता है। तो उस दृष्टिकोण को वहां समझना है। जैसे वहां काल लब्धि ली जाए तो जो काल लब्धि को नहीं मानते हैं उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो मानते हैं उसको काल लब्धि का विषय अवलंबन लेने के लिए नहीं है। काल लब्धि का विषय ज्ञान करने के लिए है लेकिन अवलंबन लेने के लिए नहीं है। शास्त्र के कोई भी प्रसंग कथानुयोग के हो या शास्त्र के कोई भी प्रकार की बातें हो, दो खाता रखने का है खतामनी करने के लिए। ये अवलंबन करने योग्य बात है या सिर्फ उसका ज्ञान करने के योग्य बात है? ज्ञान करके वस्तु स्थिति का ज्ञान करके उसके गौण रखना एक खताने की बात है, और दूसरे कई बातें ऐसी होती है कि जो अवलंबन करने योग्य होती है। दो प्रकार का हमें अगर भेद नहीं छाटा तो जो अवलंबन करने योग्य है वो मात्र जानने का रह जाएगा और जो जानने योग्य है उसका अवलंबन आ जाएगा, बात हो जाएगी उल्टी। आराधन नहीं होगा, विराधन हो जाएगा, आराधना की जगह विराधना हो जाएगी, तो वो भी ध्यान रखने योग्य बात है। काल लब्धि, क्रमबद्ध पर्याय, स्वकाल, ये सब जानने का विषय है कि वस्तु स्थिति ऐसी है, लेकिन ये अवलंबन लेने योग्य बात नहीं है। इसका अवलंबन लेने से नुकसान होता है। जैसे सम्यक दृष्टि भी चक्रवर्ती होता है और उसको बहुत वैभव होता है छह खंड का, तो ये अवलंबन लेने का विषय नहीं होना चाहिए कि हमारे पास तो कम परिग्रह है, चक्रवर्ती जितना तो नहीं है, तो वो भी ज्ञानी होते हैं तो हमें परिग्रह से क्या बाधा है। लेकिन वो परिग्रह में महत्व नहीं करते थे और हमारे पास थोड़ा होने पर भी ममित्व तो ज्यादा करते हैं। तो अवलंबन लेने का विषय नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की कहीं भी बात हो तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए कि हमें नुकसान का कारण बन जाए।
आज समवाय में उस पुरुषार्थ जो है पांच समवाय है उसमें पुरुषार्थ है उसको कौन से खाते में खत आए
पुरुष है तो उपाधि है पुरुषार्थ है वो करने योग्य है होने योग्य है करने माने होने योग्य है तो पुरुषार्थ भी एक पर्याय है तो पर्याय को मिलान करने की बात है कि ऐसा हुआ होता है या नहीं होता है पर्याय का विषय मिलान करने के लिए होता है कि हम अपने परिणाम से उसका मिलान कर ले वो भी अवलंबन योग्य नहीं है मिलान करने योग्य है लेकिन अवलंबन करने योग्य नहीं है ऐसा लेना लेकिन एक बार भक्ति के विषय में प्रश्न किया था भक्ति के बारे में सत्पुरुष के प्रति कैसी भक्ति होनी चाहिए इस विषय में आपने प्रश्न किया था उस संबंध में ज्यादा बात तो समागम में हो सके ऐसा है प्रत्यक्ष समागम में और बहुत करके सभी बातों के लिए समागम ही हमें ठीक लगता है प्रत्यक्ष समागम ही ठीक लगता है तो भी बहुत ही संक्षेप में उत्तर लिखते हैं अब कहते हैं जो लिखना है वो भक्ति कैसे होनी चाहिए परमात्मा और आत्मा का एक रूप हो जाना यही पराभक्ति की अंतिम आखिर की हद है क्या इतना स्वरूप का परमात्मा स्वरूप का इतना बहुमान होए उतना बहुमान होए कि उसमें लीनता हो जाए वो भक्ति की महिमा की आखिर की हद है जो शुद्धोपयोग होता है ना तो कैसे आता है शुद्धोपयोग कि उतने स्वरूप की महिमा आती है स्वरूप के पहचान होने के बाद उतनी महिमा आती है उतनी के परिणाम उसमें लीन हो जाते हैं तब शुद्धोपयोग उत्पन्न होता है एक यही लय रहना लय चालू रहना ऐसे वह पराभक्ति है परम महात्मा गोपांगना अब एक दृष्टांत देते हैं भागवत का गोपांगना को क्या कहा परम महात्मा कहा महात्मा ने कहा क्यों कि उसकी भक्ति ऐसी थी श्री कृष्ण के प्रति इसकी भक्ति ये ऐसी थी उतनी बेहद भक्ति थी असीम भक्ति थी कि उसको महात्मा नहीं करके परम महात्मा कहते हैं भक्ति करने वाले को ये दृष्टांत है श्री कृष्ण के जगह अपना स्वरूप है और भक्ति करने वाले के स्थान में अपनी वृत्तियां हैं पर्याय हैं अध्यात्म इसका ऐसा है परम महात्मा गोपांगना हो महात्मा वासुदेव की भक्ति वासुदेव को महात्मा कहा परम महात्मा ने कहा